और तो वो बात उसने नहीं समझी और उसके लाखों पड़ती चीजें पूरी नहीं की। तो अल्लाह की तरफ से बात अल्लाह ने फरमाई है, अल्लाह उसको चैन से जीने नहीं देंगे। जब मरना होगा तो मरना बुरा हो जाएगा। जब दुनिया में अंबिया थे तो अंबिया इन बातों को लोगों को समझाते थे। ये जो मुझे बात समझाई जाती है, लोगों का जहन ये है, लोगों का हया ये है, ये दीन की बातें जो है ना वो मरने के बाद काम आएंगे, मरने के बाद से जिंदगी के लिए। हमारे नबी इस्लाम ने हजरत अबू सुफियान से फरमाया, अबू सुफियान जो बातें मैं समझा रहा हूं वो है, वो ऐसी है कि तुम्हारी दुनिया को भी पहले बेहतर बनाएगी फिर आखिरत को भी। जिन तो हम देखा हम दुनिया और आखिरत कि मेरी बताई हुई बातें वो है कि जो सबसे पहले दुनिया पर असर अंदाज हो गई। दुनिया पर क्यों? दुनिया अल्लाह की है, ये दुनिया किसी के बाप के लिए है, किसी की जगह से नहीं, ये दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है। अल्लाह उसमें जिसको खुशहाल बनाएंगे वही खुशहाल बन सके। और अगर अल्लाह किसी को इस दुनिया में बदहाली तय कर रहे हैं तो खुशहाली के अनुभव में वो बदहाल हो जाएगा। एक तो दुनिया का नजरिया यह है कि खुशहाली का तर्जुमा यह है कि भाई अच्छा घर बन जाए, खुशहाली का तर्जुमा कर वो ये कर ले कि अच्छी जॉब हो जाए, अच्छा धंधा हो जाए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो जाए। तो आपको हजारों लोगों मिलेंगे कि जो अच्छे घरों में परेशान है, दुनिया में हजारों लोगों मिलेंगे कि जो अच्छी जॉब के बाद परेशान है, और हजारों लोग मिलेंगे कि जिनके बच्चों ने अच्छी पढ़ाइयां की है और अच्छे जॉब कर रहे हैं लेकिन वालिदैन उनसे परेशान है, उनसे वालिदैन से उनको उनसे सुकून नहीं। ये सारे शब्द मौजूद थी, इसलिए बात फरमाई कि जो बातें समझाई जा रही है अगर वो बात समझी गई तो उसका असर पहले दुनिया पर पड़ेंगे और फिर मरने के बाद की जिंदगी बढ़ेगी। क्योंकि दुनिया गफलत की जगह है, अल्लाह कहते हैं कि गफलत की जगह है, ये धोखे की जगह है। और दूसरी बात ये भी फरमाई कि तुम्हें धोखा देने वाली दुनिया धोखा न देते। ला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहि ग़ुरूर, ला यग़ुर्रन्नकुम अल-हयात अद-दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखा न देते। इस दुनिया में धोखा देने वाली चीजें क्या है? इस दुनिया में धोखा देने वाली चीजें हमारी बीवी भी धोखा देने वाली चीजें, हमारे बच्चे वो धोखा देने वाली चीजें। अल्लाह कुरान में जो फरमाते हैं कि तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलादें, ये औलादा पर क्या खबर है कि तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलादें, हम तो समझे ही नहीं कि अल्लाह के अवामिर के पूरा करने में वही रुकावट होंगे कि बीवी की मंशा कोई होती है और उसको दीन के हुक्म से बर्बाद कही जाती है। अल्लाह का अमर उसकी तरफ कोई मुतवज्जो होता है, बीच में औलादें आ जाती हैं। तो ये जो चीजें बीच में आती है ये सब आदमी को सही रुख से हटा देती है और उसका नतीजा वो नहीं जानता। उसका नतीजा पहला उसके जीने पर पड़ता है, फिर उसका नतीजा उसके मौत पर भी पड़ता है। मौत पर कैसे पड़ता है? कौसली बात मौत की ये है कि आदमी ने जैसा जीवन जिया होता है ऐसी ही मौत आती है। अजमर फरमा देते हैं तुम जैसा जियोगे ऐसे ही मरोगे। कमा ताहिया न तमतूर कमा तमतूर न तो बातूर तो शरूम, अरे लोगो तुम जैसे जियोगे ऐसे ही मरोगे और जैसे मरोगे ऐसे ही मरोगे। कोई ये नहीं समझे कि भाई जैसे भी जीने वाले अच्छे मर जाएंगे, ये गलत बात है, ये गलत सोच है। जो जैसा जिएगा ऐसा ही मरेगा। अगर शेख ने उसके वाक्य देखे, वाक्य नहीं है कि एक आदमी को मौत का उतार है उसको कह रहे हैं कलमा पढ़ ले तो कह रहे हैं शराब पजाम को भी पी, शराब पजाम मुझे भी मिला। एक आदमी की मौत का उतार है उसको तेल कर रहे हैं वो कह रहे हैं 10-10 रुपए 11-11 रुपए, तो क्या बात हो गई कि जिंदगी इसी बोल के साथ गुजारी है। तो वही बोल बोल रहा है हजरत ने वाकया नहीं देखा। अल्लाह के नबी सलाम नमगीन बैठे हुए थे तो जब इस्लाम तशरीफ लाए और पूछा क्यों नमगीन बैठे हो, तो मुझे अपनी उम्मत के फिक्र है। फिर पूछा कौन सी उम्मत के फिक्र है, कलमा पड़ चुके वो या बगैर कलमे वाले कलमे वालों के फिक्र है। तो उनका हाथ पकड़ा और बनू सलमा के कब्रस्तान में ले गए। वहां जो कब्र थी उनमें से कब्र से खड़ा किया, वो कब्र वाले अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो गया, उसको खड़ा किया। तो वो खूबसूरत चेहरे वाला खड़ा हुआ और ये कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसको कहा अच्छा सर्पजों के मध्य उसको कहा अच्छा तू भी खड़ा हो जाए। तो वो जब खड़ा हुआ तो कहना चेहरे वाला पल में गया ऐसा आया उस शर्त लगी मुझे कुछ नहीं पता। फिर फरमाया कि ये जिस हल में जिया उसी हल में मरा और अब उसी हल में उठ रहा है, और ये दूसरा जो है वो जिस हल में जिया उसी हल में मरा और उसी हल में उठ रहा है। और ये बातें हम दुनिया में नबी नहीं है समझाई जा रही है, मस्जिद में मेहनत के रास्ते से ताकि एक एक ईमान वाला इसको समझे और इसको समझकर अपने ऊपर रहम खाने वाला बने, अपनी जात पर रहम खाने वाला बने, अपनी औलाद पर रहम खाने वाला बने। अपनी जात पर क्या रहम खाए कि अपनी जात पर यह रहम खाए कि जब जिए ये अच्छा जिए परेशानियों से हटकर जिए और जब ये मरे इसका मरना अच्छा हो जाए। और अपनी औलाद पर क्या रहम खाए कि अपनी औलाद को ये अच्छे रास्ते पर छोड़कर जाए। ये हुक्म अल्लाह ने नबी को दिया था कि अपने ऊपर रहम खाओ अपनी औलाद पर रहम खाओ। क्या मतलब वो अंदर वाला निको अगर रहम नहीं खाया और ये बातें नहीं समझी तो ये जिस्म जहन्नम में जलेगा। ये हुक्म दिया वो अंतो सकूं बहाली को ना, इसका मतलब मुखालिफ क्या होता है अगर मेहनत हुई तो आग से बचेंगे नहीं हुई तो आग में जाएंगे। तो ये अपने ऊपर रहम है कि आदमी जीते जी इसलिए अपने ऊपर मेहनत करके जाए कि ये जिस्म आग के लिए नहीं है ये आग में न जले, इसलिए अपने ऊपर रहम करे। आदमी दुनिया में सबके लिए हमदर्दी करता है अपने लिए हमदर्दी नहीं करता है, सबकी हमदर्दी के साथ जीता है अपनी हमदर्दी के साथ नहीं जीता। इतना ज्यादा थकता है उसको पूछे कि भाई तुम्हें कितना थकना पड़ रहा है, तुम्हें दो रोटी दो बोटी तुम्हारी इतनी जरूरत है फिर इतना टाइम को थकते हो। तो एक आदमी कहता है कि मेरे बच्चे हैं मेरी बीवी है, बीच में बच्चे ले आता है, बीच में बीवी को लाता है, बीच में माँ बाप को लाता है, पता नहीं किसको किसको लाता है। लाना चाहिए उनका हक है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, ये जरूर लाना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी इतनी है जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है इतनी जिम्मेदारी है। लेकिन हम देखेंगे कि हम जरूरत का करते हैं उससे आगे का करते हैं। तो उन सब की हमदर्दी में हमारी जिंदगी गुजरती है, अगर हमदर्दी में नहीं गुजरते तो अपनी हमदर्दी में नहीं गुजरती, अपनी जात की हमदर्दी में हम ठीक है। हमारी जान दूसरों पर लगती है और हमारा माल भी दूसरों पर लगता है हमारे ऊपर नहीं लगता। शादी हो जाती है जब औलाद होती है ना, औलाद होने के बाद आदमी अपने लिए जीना छोड़ देता है। औलाद होने के बाद आदमी अपने बच्चों के लिए जीता है। आप देख लो शादी होने के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप तंगी बर्दाश्त कर लेता है लेकिन बच्चे के लिए खुशहाली को देखता है, वो ऐसा हो जाए वो ऐसा हो जाए। बेटों का दुख बाप नहीं देख सकता, ये अल्लाह ने जीना बनाया है तो वो उसकी जान उन पर लगाता है, अपना माल भी उन पर लगाता है, अपने लिए अपनी जान में नहीं लगाता। अपने लिए जो लगाने की जगह बताई ये मुबारक मेहनत के रास्ते से कि आदमी अपने ऊपर इतनी मेहनत कर ले कि उसके उससे अल्लाह के हुक्म न टूटे, अल्लाह के मांगे न टूटे, अल्लाह की मना करता चीजें हमसे हो न जाए। और ये सारी चीजों का जो मदार है वो अल्लाह पर है विश्वास और अल्लाह पर आतिमत, इसको ईमान कहते हैं। क्योंकि अगर वो अल्लाह पर आतिमत और विश्वास जो बातें अल्लाह ने समझाई उस पर सही आतिमत और विश्वास बनता है, इसका मतलब कि आदमी अपने आप को फिर पाबंद बना देता है। जैसे गवर्नमेंट का काम करने वाला उसको पता है ऐसा करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा, भाई ये 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 लाल बत्ती है वहां जाएंगे तो फाइन लगेगी, उसका यकीन है तो रुक जाएगा, ये वायर में करंट है उसको पकड़ेंगे करंट लगेगा रुक जाता है। ऐसे अल्लाह ने जो बातें समझाई ऐसा ही होगा, जब ये आतिमान बनता है तो आदमी करने की चीजों को करता है और न करने की चीजों से एकदम रुकता है। किताबों में कि मोमिन गुनाह को ऐसा समझता है कि उसके सर पर पहाड़ हुआ है जो गिर जाएगा, और गुनाह कैसे समझता है जैसे मक्खी बैठे थे और घोड़ा आ रहा थी। लेकिन ये कैफियत जो है वो ईमान से जुड़ी हुई है, ये कैफियत देखिए ईमान से जुड़ी हुई है। हदीस में आता है इदा सरत का सरत हो वो इदा सात का सैयद फ्रफम कि तुझे तेरी नेकी खुश करे और बुराई हो जाए तो उस बुराई को तू बुराई समझे तो ये समझ ले तू मोमिन है। जब ईमान मेला हो जाता है तो ये कैफियत खत्म हो जाती है। किताबों में आता है ऐसे मेला हो जाता है जैसे कपड़े मेले हो जाते हैं, और जब कपड़े मेले हो जाए तो उसमें खुशबू आती है का मेले कपड़ों में बदबू के अलावा कुछ नहीं। तो ईमान भी ऐसे मेला हो जाता है जैसे कपड़े मेले हो जाते हैं, और जब जैसे मेले कपड़ों में बदबू आती है ऐसे ईमान वाले से बदबू आती है। वो बदबू क्या होती है? आंखें गंदा देखना शुरू कर देती है, उसे कोई एहसास नहीं होता, कहना सुनते हैं उस गुना को गुना नहीं समझता, जबरदस्ती कैसा भी बोल ले उसको बुरा नहीं समझता, हाथ पैर को कैसा भी इस्तेमाल कर ले उसको कोई बुरा नहीं समझता। हालांकि वो एक एक चीज ऐसी है किताबों में आता है कि आदमी जबान से जुमला बोलता है और जन्नत के में बहुत ऊपर पहुंचा दिया जाता है, और वाज़ह मतलब जबान से वो एक जुमला बोलता है और जन्नत के तह में पहुंचा दिया जाता है। ये इसको उसको छोटी चीज समझता है। तो ये चीजें समझना, वरना जब आदमी अपने दीन पर मेहनत नहीं करता, अपने ईमान पर मेहनत नहीं करता, तो ये अच्छे खोटे की तमीज उसकी जिंदगी से खत्म हो जाती है। मजाक समझ लेता है इसको, अपनी जिंदगी का टाइम पास समझ लेता है, गम्मत समझ लेता है, हालांकि वो उसके जहन्नुम का संबंध क्या हो जाता है। इसलिए ये चीजें समझाई जाती है कि आदमी इन चीजों से बच कर हुआ अपने ऊपर रहम खाए और चीजों का पाबंद बनकर जीने वाला बने, और मना करते हैं उन चीजों से बचकर जीने वाला बने। ये गश्त की मुबारक मेहनत के रास्ते से मोहल्ले के लोगों को जमा करके इन फिक्रों पर खड़ा करना होता है। हर आदमी अपने ऊपर रहम खाने वाला बने। दूसरा, इस मुबारक मेहनत में ये फिक्र की जाती है कि पूरे मोहल्ले वालों में ये फिक्र जिंदा हो जाए कि हमें इस तरह से जीना है और यही माहौल हमें अपने घर में बनाना है, क्योंकि हम घर में रहेंगे। अगर मैंने अपने आप को जागरूक कर लिया और घर का माहौल ही बनाया, घर में 10 मेंबर हैं तो 10 9 मेंबर की फिक्र अलग हो गई, मेरी फिक्र अलग हो गई, तो मैं अकेला उस घर में नहीं रह सकता हूं, अपनी फिक्र के साथ नहीं रह सकता। 1 लीटर गर्म गर्म पानी 10 लीटर ठंडे पानी में डालो, वो ठंडा हो जाएगा। हम जो फिक्र लेकर गए वो अगर घर में नहीं चली तो घर उसी फिक्रों का असर लेगा जो घर में होगा, हम वही उसी फिक्रों का असर लेंगे। इसलिए इस मस्जिद की मेहनत से समझाया जाता है, घर आदमी अपनी फिक्र करें अपने घर वालों की। और ये नई बात नहीं है, ये बात अल्लाह ने नबी को भी कही कि अपनी फिक्र करो और अपने घर वालों की करो। वो अनुसार मुहाले को फिर इस गश्त के रास्ते से मोहल्ले वालों को इस फिक्र में यूँ शरीक किया जाता है कि भाई जिस घर मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में भी ये फिक्र शुरू करो। लोग अगर ये मोहल्ले में ये फिक्र नहीं हुई तो मोहल्ले में जो फिक्र होगी वो तुमको लग जाएगी, मोहल्ले की जो फिक्र होगी ना वो फिक्र तुम्हें लग जाएगी और तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। फिर उसी फिक्रों में हम जियेंगे, उसी फिक्रों में हम मर जाएंगे। हम लोग यहाँ आए थे बहुत सालों पहले, विद्यानगर में मुलाकात हम बच्चों की आते थे तो आए थे, तो हम बच्चे ले गए एक प्रोफेसर साहब की मुलाकात में, तो हमको ले गए तो गाँव के मोहल्ले में रहते थे, मोहल्ले का असर कैसा पड़ता है वो बताओ। तो मोहल्ले की मुलाकात में ले गए तो हम बैठे, तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा बेटी सीमा मीना पानी लाओ। तो हम हैरान हो गए कि हम कैसे मीना आ गई। हमने बाद वो पानी लाई, उसके बाद पूछे कितनी बेटियां हैं, उन्होंने कहा 2 बेटियां हैं। क्या नाम रखा है? तो उन्होंने एक ने कहा कि एक का मीना रखा है और एक का दीना रखा है। तो हमने कहा क्यों? तो हम तो अंधारों के साथ रहते हैं, हमें तो अपने आप कैसे रखना है, हम तो नहीं जाहिर करते हम मुसलमान। आप कहां क्यों? उन्होंने कहा फला जगह के, जब यहां रिटायर हो जाऊंगा अपने गांव जाऊंगा तो उसको दीना को मदीना कर दूंगा, मीना को अमीना करूंगा। उसने कहा तो हमने उनसे कहा डॉक्टर साहब ये मीना मीना मदीना अमीना जैसे रहेगी तो अमीना करोगे ना, और ये दीना मदीना जैसे रहेगी तब करोगे ना। एक एक बच्चे और बचपन से लेकर 20-25 साल तक किसी परवरिश पाई और आप एकदम ये घेरे थे तुम कल इसमें गाड़ी डाल दोगे, ये तो पूरा कल्चर बदलने का होता है। और वो तो बदलते 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 बदलता है, ऐसे थोड़ी बदल जाएगा। और उसके दुनिया से जो बीज पड़े हैं वो ऐसे थोड़ी, वो तो झड़ जाएगा। ये मोहल्ले के माहौल का असर कि जिस मोहल्ले में, इसलिए हमको हुक्म है कौन से मोहल्ले में रहने जाने का, सेठियों के मोहल्ले में जहां सेठ अच्छे अच्छे हो, वेलसेट कॉलोनिया बनी हुई हो, वो मालदारों के मोहल्ले में हुक्म तो ये उस मोहल्ले में रहने जाओ जहां के पड़ोसी अच्छे हो। पुतलो मिल जा कब लगता, पुतलो मिल जा कब लगता, ऐसे मोहल्ले पसंद करो रहने के लिए कि जहां का माशरा दीनी माशरा हो। हाँ आजकल पैसे आ जाते हैं बड़ी कॉलोनियों में लोग रहने जाते हैं, पर अपना वो समझते हैं कि भाई हमारा वो स्टेटस है उस मोहल्लों में, ना दीन होता है ना दीन की मेहनत होती है, देख लो गरीबों में दीन होता है। हाँ जब हम हुजूर अलैहि सलाम की जमात हर्षा गई तो वहां के बादशाह ने पूछा कि तुम्हारे नबी का साथ देने वाले कौन लोग हैं, तो गरीब लोग हैं, जब तुम्हारा नबी सच्चा है तो नबियों का साथ देने वाले गरीब होते हैं, वही जमात में जाएंगे, वही गश्त कराएंगे, वही मेहनत में जाते हैं, मतलब तो बहुत कम जाते हैं, लेकिन हम तो सर पैसे आ जाते हैं लोग उस माहौल में जाते हैं। अगर उस माहौल में दीन की फिजा कायम की जाए तो वो माहौल अच्छी चीज है, और अगर कायम न किया जाए तो फिर वो माहौल का असर देखा देखी में चैन में रुक लेता है। इसलिए मोहल्ले के सारे लोगों को इस फिक्रों में शरीक करने की मेहनत है कि इसको कोई गश्त के अमल को सरसरी न समझे, बल्कि मोहल्ले में गश्त करके मोहल्ले के सारे मुसल्ली मस्जिद में आए और हमारी इस मस्जिद के फिक्रों में सब लोग कैसे शरीक हो जाए, क्योंकि मुझे भी उस मोहल्ले में रहना है। अगर हमने ये फिक्र अपने मोहल्ले में शुरू नहीं की तो मेरे घर में तो दीन की बातें कर रहा हूं, लेकिन मोहल्ले की जो उम्र फिजा होगी उसके जरा से मेरे बच्चों को भी लगेंगे, हमको भी लगेंगे, और हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए मोहल्ले के सारे लोगों को रोजाना के घर घर की मुलाकात के जरिए से और हफ्ते में एक मतलब अगस्त के जरिए से फिक्रों में शरीक किया जाता है। और ये एक तो हमारी जरूरत की चीज है और दूसरा हमारी जिम्मेदारी की चीज है। जरूरत की चीज इसलिए हम इस्लाम पर मरना चाहते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने जब मदीना आबाद किया तो पहला टारगेट ये बनाया कि यहूदी नहीं रहनी चाहिए यहां, वरना वो हमारे माहौल को खराब कर लेंगे। उन सबको निकाल दिया, खैबर में भेज दिया, پھر اپنے آخر زمانے میں تو تمنا کی یہ تو یہ عرب میں بھی نہیں ہونی چاہیے. تو فرمایا خرج العرب خرج الیہود من جزیرۃ العرب, کہ یہودی ہمارے بیچ میں رہے تھے تو ہمارے ماحول کو گندا کرنے گئے. تو یہ ہمارے ضرورت کی چیز ہے کہ ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں اور اس میں مرنا چاہتے ہیں. ایک تو ضرورت کی چیز ہے اور دوسرا ہماری ذمہ داری کی چیز ہے کہ ختم نبوت کے صدقے میں ہر ایمان والے کا ہمدرد بننا یہ ہماری ذمہ داری کی چیز ہے. ہر ایمان والے کا ہمدرد بننا, ورنہ ایمان والا کھو جاتا ہے. ابھی آپ کی مسجد میں جماعت ہے, یہ ویسٹرن ڈے سے آ رہی ہے, جو آپ کے یہاں سے بھی ایک جماعت لے جائیں سمیر کے ساتھ, وہاں مسلمان بہت گئے ہیں, سب کھو گئے ہیں. وہاں کا مسلمان کھویا ہوا ہے. وہاں آپ کو گھر پر دروازے پر دستک دے کر پوچھنا پڑتا ہے تمہارے گھر میں کوئی مسلمان ہے. تو ایک کسی کی بیوی مسلمان ہوتی ہے, کسی کا شوہر مسلمان ہوتا ہے, ہم لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے. تو کسی کی بیوی مسلمان, کسی کا بچہ مسلمان, کسی کی بیٹی مسلمان, پھر کہتے ہیں یہ میرے گھر میں میری لڑکی مسلمان ہے, دوسرے کوئی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے یہ میری بیوی مسلمان ہے, شوہر نہیں ہے. کوئی کہتی ہے میرا شوہر مسلمان ہے, بیوی نہیں ہے. مسلمان کھو گیا. جب عمومی ماحول نہیں ہوتا تو عمومی ماحول نہ ہونے کے نتیجے میں مسلمان کھو جاتا ہے. تو یہ عمومی ماحول اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ ہم اس میں جینا چاہتے ہیں, اس میں ہم مرنا چاہتے ہیں. یہ تو اللہ کا ایسا ہے کہ آپ کے وہاں تبلیغ کی محنت اچھی چل رہی ہے, اچھی فضا ہے کہ ماشاء اللہ مغرب میں مسجد بھری ہوئی تھی, عشاء میں مسجد بھری ہوئی تھی, گشت کرنے میں اتنے سارے لوگ ہیں. ورنہ اور جن علاقوں میں دین کی محنت نہیں ہوتی وہاں جا کر مسجدیں دیکھو, جن علاقوں میں محنت نہیں ہوتی ان علاقوں میں مسجد دیکھو. شہر بھی شہر بھی ویران ہو جاتے ہیں, شہر والے بھی ویران ہو جاتے ہیں. ہاں تو اللہ کا احسان ہے کہ آپ کے وہاں ہم لوگ ایک بستی میں گئے تھے فرجا کے پاس, وہاں سو گاؤں میں 13 مسجدیں تھیں, 13 مسجدوں میں ایک میں بھی امام نہیں تھا. ہاں امام نہیں تھا. تو ہم لوگ اس میں گئے تھے, ہم نے ہمارے پاس دوست کو ایک مسجد نہیں تھا, ایک امام کو چھوٹے کر دیے. ہمارے دماغ کا مسجد نہیں تھا, ہم نے پتہ مطلب میں لے رہا تھا. ابھی بھی واپسی ہونے والی تھی تو پکا کے لوگوں سے ملاقات ہوئی. تو خیر کرے پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ مسجد میں امام والی نہیں ہے, پوری مسجد میں نہیں ہے. محنت کرنے والا ہی نہیں ہوگی میں تو ہم مسجد میں کوئی آتے نہیں. تو ابھی امام کو کیا کریں گے, تم نے چھوٹا کر دیا, ہمارے پاس بغیر کے پیسے نہیں ہیں. تو دوسرے مسجد پر بھی دیکھا, ہم نے تو ہماری مسجد کو بھاڑے پر رکھ دیا, 10,000 لینے کا بھاڑا آتا ہے. پیسہ کیا نہ شہر رہتا ہے نہ شہر والے رہتے ہیں, اس لیے وہ میں زیادہ بنا نہیں پڑتا. یہ ہمارے لیے بوجھ نہ بنے, قوموں میں چلنا پھرنا کتنا آباد ہے. تمہارا بچہ بچہ دیکھو سب کر ایک مسجد میں جوان بیٹھے ہیں, جوان مسجد میں ہوتے ہیں, جوان مسجد میں نہیں ہوتے, وہ پارک میں ہوتے ہیں, رات کے وقت ہوٹلوں میں ہوتے ہیں, کھانے والے جاتے ہیں. یہ تبلیغ نے سب کو گھیر کے ہی رکھا, سب کے سب کو پریڑیاں پہنا, یہ محسوس کر لیا. مطلب یہ ماحول بھولنے کے لیے درد سب ملتا ہے. جوان جب آدھا معاشرہ بنتا ہے تو جوان مشکل مل جاتا. ایک جگہ پر ملاقات میں ایک ملک پہ گئے وہیں پر, تو وہ گھر والے چھٹی نہیں دے رہی. ملاقات ہو گئی ابھی ابھی بیٹھے رہو ابھی بیٹھے رہو بھائی ملاقات ہو گئی اب تو جانے دو. تو 1.5 گھنٹہ بٹھائی رکھا. پھر جب فارغ ہو گئے تو اس نے کہا بات یہ تھی کہ میرے گھر میں میری بیٹی کا جو ہے اس کا بوائے فرینڈ آیا ہوا تھا, وہ تو آپ کی وجہ سے یہاں نہاز کر کے کچھ کرے تھے, اس لیے میں نے ان کو بٹھایا رکھا, ورنہ کھلا ہوتا تو وہ سب کو یہی کر لیتا. کہ جب آزاد کا معاشرہ بنتا ہے تو یہ سارے جراثیم لگ جاتے ہیں. ہاں یہ اصولی بات ہے کہ زمین ہے فرجوب زمین, زعفران اگانے کی صلاحیت ہے اس میں, چاول گیہوں اگانے کی صلاحیت ہے. لیکن جب اس کو ایسی بنجر چھوڑ دو تو وہ زمین جو زعفران اگا سکتے تھے وہ خراب ہو جائے گی, سخت ہو جائے گی. پھر سخت ہونے کے بعد اس پر کانٹے اگ جائیں گے, کانٹے اگانے نہیں پڑتے, کانٹے خود بہت اگ جاتے ہیں. تو گلیوں میں گھروں میں محلوں میں کانٹے اگ جاتے ہیں. تو یہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے یہاں ہوں گے, اس کے لیے بیشوں کی محنت رہے ہوں گے. جہاں سب جوان جوان بیٹھے ہیں, جوان مسجد میں ہوتے ہیں. چلاؤ میں آتا ہے شرا مشاور جنون, جوانی تو پاگل بنا ہوتا ہے, ساری اسٹائل جوانی میں ہی کرتا ہے. کوئی یوں کر پائے گا, کوئی یوں کرے گا, کوئی یوں ٹہرا بیٹھے گا, کوئی یوں اسٹائل کرے گا, کوئی کمر ڈرائنگ کیا کر دے گا, ساری اسٹائل جوانی میں ہوتی ہے. چلاؤ میں آتا ہے جوانی جنون ہوتی ہے. لیکن اللہ کا ایسا نہیں, تبدیل آپ کے وہاں پہنچی, آپ کے یہاں کے لوگوں نے بہت اچھا استقبال کیا تبدیل کا, اور تبدیل کا بہت مسرت کی. تو اللہ نے آپ کے بغیچے کو ہرا بھرا کیا, یہ چمن ہرا بھرا ہو گیا. آپ لوگ دیکھو بے روم چاہنے والی جماعت آپ کے یہاں آپ کی ہے, یہاں کی ہدایت دے کر دوستوں میں چاہیے. کتنے ضلع ہیں, 21 ضلع ہیں تو ہمارے لیکن کہ آپ لوگوں کو چل رہا ہے تو آپ کے اندر نہیں آئے گی. جب کس طرح کے ہونے کی ہے یہ سر آپ کے چلے بندے تھوڑے اس کو باقی رکھیں کہ آپ سب رشتہ نہیں کرے. ہاں تو اپنا ان کے ساتھ کسی کا رشتہ نہیں, ان کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں. من وقت آئی ہمارا غلط جس طرح آئی نسل جو خود خراب ہو جائے وہ چاہے کتنے بھی بڑا جھڑکا ہوگا اس کی پرواہ نہیں کرتے. جو خود خراب ہونے جاتے ہیں کل دیں تو وہ چاہے کتنے بھی بڑے جھڑکا ہوگا اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. من بفا بھی عمل لگ سر نہیں نہ سب ہو. کہ جو خود خراب ہونا بہتر ہے وہ چاہے نبی کا بیٹا ہو اللہ اس کو برباد کر رہے ہیں. اس لیے آپ حضرات کے سب کی اجتماعی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ نے کوئی خراب کے معاملے کو ماشاء اللہ پہلے سے ہی تبدیل اچھی ہوگی, ماشاء اللہ دین کی محنت بھی اچھی ہے تو یہ پروان چڑھ ہے اس کے لیے اس میں اپنی قربانیوں کو بڑھانا اور دین کی محنت کو بڑھانا تاکہ آپ کے بعد آنے والی نسلوں میں بھی یہ چیز چلے اور پروان چڑھے اپنے کاروبار کے مشورے کے ساتھ مہینے کے دن دن ہمارے لگے اور وہ مہینے کا اپنے کم سے کم سالانہ چلر ضرور لگے تو ایمان پیدا ہو جاتا ہے یہ اس کا گھوڑ ہے اس کو اس کی صفائی ہو جائے گی. مولانا جیسا فرماتے تھے تبلیغ کی محنت لوگوں نے تبلیغ رکھ دیا نا ورنہ میں نے اس کا نام تبلیغ نہیں رکھتا, اگر بھی اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا کہ ایمان کو حرکت بلاتی ہے یہ تو یہ ایمان کو حرکت بلائے گی اور جب ایمان حرکت میں آئے گا تو یہ سب اچھی چیزیں اچھی لگنے لگے گی بری بری لگنے لگے گی. اس لیے کم سے کم سال کا چلہ ضرور لگے تاکہ جو گرد ہوا چڑھائے وہ دور ہو جائے, مہینے کے تین دن ضرور لگے تاکہ جو تراسیم 27 دن میں لگے وہ, اور 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ وقت ہمارا محلے میں اس عظیم دین کی مدد کے لیے چلنا پھرنا ہو جائے. ہاں کہ ہم اللہ کے نمائندے ہو جائیں, لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کمپنی کا آدمی, یہ فلاں آدمی, یہ فلاں آدمی, یہ فلاں, تو ہم کو لوگ کہنے لگے یہ اللہ کا آدمی ہے, یہ تبلیغ کا آدمی ہے, تو قیامت کے دن گبر ہی جائے گی. تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں بھی کہہ رہے کہ یہ بنائے بنائے فلاں, تو یہ تو پورے چلو گے مولو کر سکتا ہے یہ تبلیغ والے یہ تبلیغ اللہ کے ہمیں سمجھ جائے گی, تو روزانہ تبلیغ کے نام پر ہمارا چلنا کرنا ہو جائے. لوگ لوگوں کو سروں سے اڑکتے ہیں, ہم کو لوگ اللہ کے دن سے اڑکنے لگے. کون مر گیا تو وہ جماعت میں نہیں جاتا تھا, جماعت میں نہیں جاتا تھا, محلے میں آتا تھا, کہ ہماری نسبت دین کے ساتھ ہو جائے تو ایک تو نفع یہ ہوگا. دوسرا نفع ہمارے چلنے چلنے سے کتنے لوگ تھوڑی دیر بعد ہم نے 10 منٹ کی کسی سے 15 منٹ کی ابھی جاتے تھے کہ وائس میسج دے گا, تو ابھی ہمارا صبح گجرات کا جوڑ تھا میگھ نگر میں, کون سی گھڑی کس کے لیے کیسے ہو جاتی ہے نہیں پتا, تو اس علاقے میں ایک بڑا ذمہ دار آدمی تھا تو آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی تھی تو اس نے تبلیغ چھوڑ دی تھی, ہو گئی بات. اور اس کے بعد بہت مسئلے کھڑے ہوئے, آج اس نے وائس مجھے بھیجا کہ جو ایک آخری مجلس ہوئی تھی اس مجلس نے میرے دل کو صاف کر دیا, آج سے میں نے اکیلے تبلیغ کروں گا. کون سی گھڑی کس کے پلٹانے کی ہوتی ہے وہ نہیں پتا. پھر آپ 10 منٹ لے کر کسی کو سمجھانے کے لیے گئے, اللہ نے اس کے مقدر میں دل کو رکھتا رکھا تھا وہ آپ کے کھاتے میں آ گیا. ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہماری چلا فرت کے ذریعے سے جتنے لوگ اعمال کی طرف متوجہ ہوئے ہوں گے ہمارے مرنے کے بعد, وہ بہت بڑا ہمارا ذخیرہ ہے. اس لیے روزانہ مسجد کو ضرور ٹائم دیں اور مسجد کی ملاقاتوں میں اپنے آپ کو ضرور استعمال کریں. وہ دو دھاری تلوار ہے, دو دھاری تلوار, دو دھاری تلوار ہوں, یوں بھی کاٹتی ہے یوں بھی کاٹتی ہے, یہ روزانہ چلنا ہے. تو ہمیں جب ہم لوگوں کو روزانہ لوگوں کو اللہ کی طرف اعمال کی طرف بھلے کی طرف بلائیں گے تو برائی کرنے میں ہم کو شرم آئے گی. ہاں ہم کو شرم آئے گی کہ میں روزانہ لوگوں کو اللہ کی بات کرتا ہوں, میں برائی کروں تو ہمیں شکایت آئے گی, تو ایک ہمیں بچائے گی. دوسرا دفعہ کیا ہوگا, ہمارے کہنے سننے سے جتنے لوگ متوجہ ہوں گے وہ ہمارے کھاتے کا ذخیرہ بنے گا, تو دوسرا نیا ذخیرہ ہو گیا. تو دو گھر کی تلوار ہے, یہاں بھی صفائی کریں یہاں بھی صفائی کریں, تو روزانہ ضرور گھنٹے سے تھوڑا بہت چلے چلے, تو کئی گھنٹے میں بڑی بات نہیں 24 گھنٹے میں سے, اس لیے روزانہ ہمارا تھوڑا بہت چلنا کرنا ہو جائے گا تو ہم بھی محفوظ رہیں گے اور ہم ہزاروں لوگوں کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بنیں گے. اس لیے سب نیت کرو, ماشاء اللہ جتنا کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے, باقی اس سے آگے بڑھنا ہے. اور جس کو 3 دن کی پابندی نہیں ہے مہینے کے 3 دن کی پابندی کرنی ہے. جو ماشاء اللہ چاچا لینے جا رہے ہیں اللہ بہت مبارک فرما لے, چاچا لینے ضرور لگائے یکسوئی کے ساتھ, لیکن 4 مہینے حضرت کے فرما دیتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے کوئی مسلمان بغیر 4 مہینے لگائے نہ ہمارے, لیکن مرتبہ تو سبھی کے 4 مہینے لگ جائیں, پھر اللہ ہمت دے بار بار 4 مہینے لگاؤ تو کیا ہوگا پتا ہے آپ کو, بار بار 4 مہینے لگاؤ گے نا تو ہمارا اچھا گھٹتا ہوگا. اور پھر جب ہم جماعتیں لے کر جائیں گے تو ہمارے ساتھ جتنے لوگ آئیں گے وہ ہمارے ساتھ تیار ہو جائیں گے. ہم دنیا سے چلے جائیں گے, ہم کو اپنے پیچھے کام کرنے والے چھوڑ کر, ہمارے شہر میں حاجی صاحب تھے 54 مرتبہ چاہتے چلے گئے, وہ چلے گئے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے شہر کے ابھی جتنے ذمہ دار ہیں اکثر کا کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی اس کے ساتھ ضرور رک لگا ہے, وہ تو دنیا سے چلے گئے, لیکن اب جتنا شہر سے کام ہو رہا ہے وہ سب ان کے کھاتے میں جاتا ہوگا. ایسے کھاتے کھول کر جانے کا, اگر ہم نے ایسے کھاتے نہیں کھولے تو مرنے کے بعد ایک صبح ملا کے بھی ہم محتاج ہو جائیں گے, اور اگر ایسے کھاتے کھول کر دیے تو ہمارا کھاتا ہی بند نہیں ہوگا. یہاں کھاتا کھولا, وہاں کھاتا کھولا, بنگال میں, بہار میں, آسام میں, اڑیسہ میں, دنیا بھر کے سارے ملکوں میں کھاتے کھولنے گئے, تو ہم تو چلے جائیں گے لیکن کھاتے کھول کر رہے ہیں تو آتا ہی رہے گا. بچے بھی بھول جاتے ہیں, دیکھو یہ پورا بچنا بیٹھا ہے نا, کسی کا باپ مر گیا, کسی کا دادا, کسی کا پردادا, پردادا تو شاید کوئی نام بھی نہیں جانتا ہوگا, بہت کم ہوں گے جس کو پردادا کا نام یاد ہوگا. ہاں دادا کو کچھ یاد کرتے ہیں, تھوڑے بہت یاد کرتے ہیں, کچھ باپ کو یاد کر لیتے ہیں, ورنہ تو یاد بھی نہیں کرتے. پر ہم سب ابھی جو ہے نا اپنے بابا کے گھر میں رہتے ہیں, ہمارے گھر میں بہت کم رہتے ہیں, ہم سب کس کے گھر میں رہتے ہیں, ارے بولو अक्सर अपने बाप के घर में रहते हैं, बहुत कम होते हैं जो उस घर बसाया हुआ होता है, अक्सर बाप के घर में रहते हैं, वो बाप एक बार तो भी याद नहीं आता, और बहुत सारे दादा के घर में रहते हैं, मेरा मोहल्ला है वो सब दादा के घर में रहता है, लेकिन बहुत सारे को दादा ही पता नहीं है दादा कौन है, हमारा मोहल्ला है वो सब दादा के घर में रहते हैं, और पास छोकरे तो परदादा के घर में रहते हैं, लेकिन परदादा का नाम भी नहीं पता, तो भूल गए तो हमको भी भूल जाएंगे, जैसे हम भूल गए ऐसे हमको भी लोग भूल जाएंगे, तो हम अपने लिए अपना करके जाए, हम ये सोचते हमारे बच्चे करेंगे, हम अपने अगलों के लिए नहीं करते तो हमारे लिए बच्चे क्या करेंगे, और मैं अपने हिसाब से अपनी जान माल का मालिक हूं, तब मैं नहीं कर पा रहा हूं, तेरे बच्चे मेरे लिए क्या करेंगे, इसलिए गुजारिश है कि हम धोखा न खाएं, पर धोखा न खाएं और अपनी अपनी फिक्र खुद करें, करेंगे चाहू ये कह रहे हैं कि सुशील जरूर करना, ठीक है चाहू।